અને જાય તો ઉદાહરણ પૂછ્યા પછી વેદાંતના મહારાજજી વધારે છે એ મહિના વિરાજે છે ઉસકે પાસે પહોંચે ઉનકે બાદ ભી બહુ સારે સંતો કા લાભ અને હમે મિલતા હૈ કભી મહારાજ જી કા પ્રોત્સાહન કા સુને કા બરા સૌભાગ્ય મિલા ઉનકી વિદ્વતા ઉનકી નિષ્ઠા ઉનકે શાસ્ત્રો કે પ્રતિ કી જો દ્રષ્ટિ બડે હૃદય કે ઉપર બરા પ્રભાવ ડાલે મેં ફિર સે ભી પધારે
મેં भाव की क्या भाव का क्या वैशिष्ट्य है और शास्त्रों से वेदों से उपनिषदों से गीता इत्यादि से क्या वैशिष्ट्य है इसके संबंध में हमने बताया। व्यास जी ने महाभारत में गीता रूपि रत्न को दान दिया। वही श्रीमद्भागवत के गीता के प्रवक्ता श्री व्यास जी ने अंत में अपनी अंतिम कृति श्रीमद्भागवत को प्रस्तुत किया जगत के सामने। उन्होंने कहा गीता जहां पर समाप्त होती है श्रीमद्भागवत वहां से प्रारंभ होता है। गीता आधार भूमि है, यदि आधार न रहे नींव न रहे पक्षी तो ब्रीडिंग नहीं बन सकती, वो फिर करके चकना शुरू हो जाएगा। इसलिए बेटी संस्कृत से भी अधिक बेटी हमारी भारतीय संस्कृति का बेटी ये गीता है। तो गीता के ऊपर में प्रेम के किसको कहते हैं ये बतलाने की चेष्टा की गई है। मैं सरकारी पीठों में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, तो भी हमने सुना है और जहां सब कुछ देख रहे हैं अनुभव कर रहे हैं। मैं देखता हूं विज्ञान ने बहुत बड़ी ऊंची छलांग लगाई, ऐसी छलांग लगाई सारे जगत को एक मुट्ठी में बांध लिया। जो बहुत दूर के थे बहुत निकट हो गए। सुनते हैं कि ध्वनि से भी तेज चलने वाली बाई माने इत्यादि निकली और समय की गति से भी तेज एक जगह से दूसरी जगह में एक पृथ्वी के छोर से लेकर दूसरी पृथ्वी के छोर तक व्यक्ति को पहुंचा देती है। संचार की ऐसी व्यवस्था भी कई इंग्लैंड में कुछ हो रहा है और कोई वक्ता बोल रहा है, क्रिकेट खेल हो रही है उसके संबंध में लोग बोल रहे हैं और यहां पर घर बैठे चुपचाप सब कुछ देखिए। ऐसे जगत को मानो ऐसा एकत्र करके मुट्ठी में कर दिया, सब लोग एक हो गए। पृथ्वी बहुत छोटी हो गई, विश्व बहुत छोटा आयतन का हो गया, किंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है। इसका ये पहलू, पहला तो ये देखो किसी का हृदय यदि गड़बड़ हो गया दूसरा हृदय लेकर के प्रत्यार होगा, दिमाग किसी का कर गया दूसरा दिमाग होगा। रसोई घर के एक छोटी कोने से लेकर विज्ञान के बहुत क्षेत्र में इसने बड़ी उन्नति की, कमाल किया, आश्चर्य लगता है। किंतु इसका दूसरा पहलू लीजिए, शरीर की भूख इसने बढ़ाई विज्ञान ने, आत्मा के गुण सारे विनष्ट हो गए। सबसे जो प्यारा चीज जो संपत्ति मनुष्य की थी, जीव जंतु प्राण सबके जो मूल संपत्ति थी वो था प्रेम, वह प्रेम अंतर्हित होने लग गया, न जाने कहां उड़ने लगा। ये सब उन्नति हुई, वैभव को बढ़ा, सब कुछ हुआ, किंतु अब पहले जैसा राम और सीता में जैसा प्रेम था, जैसे गोपियों और कृष्ण में प्रेम था, जैसे आज से पहले 50 वर्ष की बात करता हूं जिस समय हम लोगों ने भट छोड़ा उसमें भी देखा पति और पत्नी में अभाव प्रेम, भाई और भाइयों में प्रेम, पिता और पुत्र में प्रीति, पड़ोसों के साथ में प्रीति। बड़े जोर से जो छलांग लगाई गई विज्ञान ने प्रेम को छोड़ दिया और नीचे वो प्रेम टूट गया। कल कलकत्ते में, बंबई में, दिल्ली में हम लोग जाते हैं देखते हैं लोगों की इतनी भीड़ रास्ते में निकलना बड़ा मुश्किल है, शरीर से शरीर रगड़ता है और उसमें एक आदमी भी गिर जाए किसी की सहानुभूति नहीं है उसे उठा लेते। एक फ्लैट लगाने वाले में एक को घर में आदमी मर रहा है और दूसरे घर में विवाह हो रहा है, कोई सहानुभूति पहचानता नहीं किसे फ्लैट में कौन है। धीरे धीरे प्रेम लुप्त होता है। अभी कुछ कुछ प्रेम देखा जाता है कहीं कहीं, कुछ दिनों के बाद में ये प्रेम भी लुप्त होने वाला है यदि विज्ञान और उन्नति करे। और यदि विज्ञान ने उन्नति करके आत्मा का भी सबक दिया कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, यदि ये छलांग लगाई और किसी योग्य संतों का संग उनको मिल गया तो प्रकृति के प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकता है। आज स्थिति समस्या प्रॉब्लम इस प्रेम की है। प्रेम बहुत कम देखने में मिलता है। या पति का बैल बैलेंस अलग हो, पुत्र का अलग हो, पुत्र बहू का अलग हो, बेटी बेटियों का अलग हो, वहां पर एक दूसरे को विश्वास नहीं, वहां पर प्रेम कहां से आएगा? प्रेम तो वहां रहेगा जब एक तरफ से फुटबॉल ग्राउंड में गेंद उठा ली, फर्श के तरफ में ये राज्य नहीं हमारा नहीं तुम्हारा, और फर्श ने मौके फुटबॉल दिया राम के तरफ में, तो ये नहीं ये राज्य मेरा नहीं तुम्हारा, इससे प्रेम। इसलिए प्रेम की समस्या है। और 5000 वर्ष पहले, अभी 500 वर्ष पहले चले जगत में कृष्ण पैदा हुए, चैतन्य महामुनि राधा जी का भाव लिया, देखा कि जगत में किसी चीज की कमी नहीं, सब चीज चल रहा है, प्रेम का भाव, प्रेम की समस्या है। इसलिए वो जब पूरी जगन्नाथपुरी से जब वृंदावन आ रहे हैं, वहां पर भालू बाघ सांप हिरण हाथी मत वाले सभी एक साथ में महाप्रभु जी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और महाप्रभु नाम प्रसार करके हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल कर रहे हैं, और उनके पीछे में बाघ हिरण का मुख क्या था, वह बड़े प्रेम के साथ में एक साथ में वो भी उच्चारण कर रहा है हरी बोल हरी बोल। उन्होंने जीव मात्र को छोटा बड़ा नहीं समझकर सबको प्रेम दान करने की चेष्टा की, जगाई बधाई जैसे प्रिया कर को भी समस्त धर्म से नहीं उस व्यक्ति को उसे गले लगाया, और वो भी हरि बोल हरि बोल बोलने लग गया, वो भी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो भी बोले, आंखों में आंसू सबके भर आए। अभी बेटी ने बड़ा सुंदर एक गान किया बाबा की फल देना, माला करते हैं गिन गिन करके और कृष्ण को भूल जाते हैं, मन की माला टूट जाती है, माला टूटी जाती है, ठीक है। यदि कृष्ण नाम कर रहे हैं और आंखों से आंखों की अगर धारा प्रवाहित नहीं होती, हृदय द्रवित नहीं हो जाता, तो समझो कि हमारे बहुत जन्म जन्मों के अभी अपराध हैं, अभी कृष्ण नाम नहीं आ रहा। चैतन्य महाप्रभु बड़ी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं, उनका जीवन ही प्रेममय है, उनका स्वरूप ही प्रेममय है, उनकी शिक्षाएं प्रेममय है। इसलिए प्रेम की शिक्षा उन्होंने दी, उन्होंने हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन जैन बुद्ध ये सबका विचार नहीं किया, हरि का भजा तो हम आत्मा है। जैसे हम भेद की कल्पना करते हैं, हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, किंतु देखिए एक ही सबके जीवन में, चाहे पशु पक्षी जीव पतंग गधा घोड़ा सूखा भी हो तीन पतंग भी हो, प्रेम का किसी न किसी रूप में उसमें जरूर कुछ पोटेंसी रहेगी, ये कभी नहीं भूल सकते। जैसे एक सुअर भी अपने बच्चे को प्यार करती है, यदि सुकरी को कहीं ले जाना है सुकर के बच्चे को गोदी में उठा करके इधर चलो देखो उसके पीछे पीछे बढ़ेगी, गैया अपने बच्चे को प्यार करती कितनी प्यार करती है, स्कूल कॉलेज में नहीं गई, प्रेम का पाठ उसने कभी नहीं पढ़ा, जन्म के ही अपने बछड़े के प्रति कैसा प्रेम है, मरता हुआ प्रेम उसके लिए अपने जान को दे देगी, कैसा प्रेम? ये प्रेम किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा? ये प्रेम पढ़ने से नहीं, ये हमारी इसमें निश्चित रूप से ये है, किसी न किसी रूप में ये प्रेम है, पति के प्रेम को शुद्ध करना है, स्त्री के प्रति जैसा प्रेम है पति के प्रति जैसा प्रेम है, और ये प्रेम नहीं ये काम है, स्वार्थ है। गाय को हम लोग आदर करते हैं, इसलिए गाय को नहीं, गाय यदि दूध नहीं देती और बच्चे नहीं देती तो गाय को हम पालन नहीं करेंगे। आम का पेड़ लगाते हैं, बबूल का पेड़ नहीं लगाते, इसलिए आम से सुंदर सुंदर मीठे फल मिलेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं, इसलिए आम के रक्षा के लिए हम उसे पानी देते हैं, ऐसा नहीं, उससे हमारा स्वास्थ्य निकलता है, इसलिए यह स्वास्थ्य प्रेम का ही विकृत स्वरूप है। जब इसी जगत का ये जो काम है स्वार्थ है, इसको सबको एकत्र करके शुद्ध करके और कृष्ण के चरणों में राधा जी के चरणों में हम अर्पित कर देंगे तो ये भी शुद्ध होगी। आत्मा का आत्मा के प्रति परमात्मा के प्रति जो भाव होता है प्रेम होता है यही यथार्थ प्रेम है। अभी हम लोग सभी स्वार्थ में हैं, किसी न किसी में जरूर स्वार्थ रहेगा, जब तक ये शरीर को मैं समझता हूं कि मैं हूं, किसी को कहते हैं शरीर में आत्मभाव, इसको छोड़ना होगा, इसलिए गीता पढ़ना जरूरी है, गीता पढ़े बिना गीता ज्ञान नहीं हो सकता, जिसे कल श्री के संबंध में हमने बताया। आज हम श्रीमद भागवतीय प्रेम के संबंध में हम कुछ दो एक एक लोगों की नैन चाहते हैं। कृष्ण जी, रास किया, रास मैंने रस शब्द से, ये रास, रस मैंने क्या, इस चीज को समझने के लिए थोड़े दार्शनिक पहलू मैं कुछ बतलाऊंगा। सबसे पहले ये समझिए, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख नहीं चाहता, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो दुख चाहता है, किंतु सुख पाने के लिए जो तरीका जो ग्रहण करता है उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई मदिरा पान करने में सुख समझता है, कोई अपनी स्त्री को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति या दूसरी स्त्री को प्रेम करता, इसमें सुख मानते हैं। कोई मांस खाने में सुख समझता है, किंतु सुख किसमें है, शास्त्र का बारीक बहुत गवेषणा करके विचार करके बताता है। बिना हरिभजन के सुख नहीं दिखाई, शांति नहीं मिलेगी। श्रुति सिद्धांत यह गुरुदारी हरि राम सबकाज विचारी, हरि राम सबकाज विचारी सर सर का शब्द है, हरि राम सबकाज विचारी। किंतु हम लोग आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास कपास, अब कपड़े बनेंगे, कपास बुनो, फिर बुलाई होगी, रुई आएगी, तकलीफे काटो, काट करके पत्र बनाओ, पहनेंगे इस पे। आए थे हरिभजन को, वो तन लगे कपास, आए थे हम आत्मज्ञान लाभ करके, इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण का भजन करके, अपने जो अपना जो होम है, अपना जो घर है, वहां जाने के सब हम लोग ऋषि जी आए हैं, दो दिन के लिए बस इसी को बनाने में लग गए, और दो दिन के बाद में हमारा ये किराया समाप्त हुआ, चलना है, सब बना बनाई यहीं पर रह जाएगा, उसके लिए हमने कोई चिंतन नहीं किया। इसलिए कहते हैं मनुष्य मात्र का ही नहीं, प्राणी मात्र का धर्म है प्रेम। अभी प्रेम दिख रहा हुआ ये काम और स्वार्थ है, यही शुद्ध होने पर, भगवान के प्रति लगने पर इसको कहते हैं प्रेम। श्रीमद् भागवत इसी प्रेम को अपना उद्देश्य और ऑब्जेक्ट मान करके उसी की तरफ में ये बढ़ा रहा। कृष्ण ने बंसी बजाई का बताया, उसमें गोपियों को फल लौटाने की बहुत देर है। गोपियों ने कृष्ण को एक तरह से बची खुद करके उनकी बातों को काटकर कृष्ण के साथ में रही। कृष्ण ने युक्ति के द्वारा यज्ञ पत्नियों को, ब्राह्मण मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों को तो लौटा दिया घरों में, किंतु इन गोप कुमारियों को लौटा नहीं सके। रस कहते हैं, रस ही आराम है, कैसे, एक चीनी गुरु का रस है, उसे चीनी का सरबत अच्छा है, उसमें नींबू और केवड़ा इत्यादि लगा दिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा। उससे जो परस्पर जो प्रेम करते हैं, या हम टीवी इत्यादि में कृष्ण की लीला या कोई चीज देख रहे हो, उसमें खाना पीना भी भूल जाएगा, उसमें एक रस है, ये मन का रस है। उस मन के रस भी आत्मा का रस जो है, भगवान के साथ में भगवान की सेवा करना, उनके साथ में क्रियाएं करना, ये और बड़ा भाग है। कृष्ण ने जब अंतर ध्यान होने के बाद में गोपियों के गीत, गोपी गीत से एकदम सहसा उनके सामने में प्रकट हो गए। जब कैसे प्रकट हुए, मनमत मनमथ, मनमत को ताकाम आत्मभूत कौरी महिमा मुखान पूजा पीतांबर हर सर्वत सत्था मनमत मनमथ। सौरी मैंने वसुदेव जी के पुत्र, क्यों कहा, व्यास जी को जरा सुखदेव को संतान को जरा रोष हो गया। मैंने कहा कि यशोदा नंदन या नंदन नंदन है, ये तो कौरी पुत्र है, नहीं तो इसका हृदय इतना कठोर नहीं होता जिन गोपियों को छोड़ करके अंदर ध्यान हो जाता। अब वो मनमत रूप धारण करके वहां पर उपस्थित हुए। गोपियों ने अपने दुपट्टे सब एकत्र करके, एक एक जातीय गोपियां, एक एक उनके लिए गद्दी से तैयार की, अपने कुमकुम लगे हुए वस्त्रों को ओढ़नी वस्त्रों को बैठक लगा दी। कृष्ण वहां पर कुछ लज्जित हुए और लज्जित होते हुए मुस्कुराते हुए जरा आंखों को नीचे करते हुए वहां पर बैठे। किसलिए कुछ लज्जित हुए? और हमने तुम्हारे साथ में अन्याय किया, तुमने हमारे लिए स्त्री अपने पति पुत्र घर बार देह गाय सब कुछ छोड़ दिया है और मैं तुम्हें छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गया। इसलिए कुछ मुस्कुराते हुए लज्जित हुए और वही वनमाला जो गोपियां ने पहनाई थी उसको पहने वहां पर बैठे। कुछ गोपियां उनके पैरों को अपनी गोदी में देख ली और उनके तरफ में देख ली। कुछ गोपियां उनके दाहिने हाथ को अपने कंधे पर ले ली, एक ने बायां हाथ को और उनके तरफ में देख ली। एक गोपी जरा दूर होकर के दूर से और अपने कटाक्षों से रोष भरे नेत्रों से उनके तरफ में देख रही, यही उचित था। इसमें इनके नाम जो दूर से रोज भरी उनके तरफ में देख रही वो कौन है? श्रीमती राधिका जी, जो उनके चरणों को अपने गोदी में लिए हुए ये दाक्षिण्य भाव वाली चंद्रावली इत्यादि उनकी सखियां। एक भद्रा जी है उनके चबाए हुए बाल को ग्रहण कर रही, ये सूर्य है प्रेम राधा जी की श्री पक्ष वाली के ये तटस्था है। कोई सूर्य पक्षों की वो श्यामला इत्यादि की है वो भी जरा रोष से है उनके तरफ में देख रहे किंतु निकट आई हुई। इसके बाद में गोपियों ने कृष्ण से प्रश्न किया, एक प्रश्न एक पहेली मुझे नहीं आया आपको। पहेली क्या? पहेली ये, कोई प्रेम करता है तो कोई उसे प्रेम करता है, कोई लाख प्रेम करे वो प्रेम नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करने पर भी प्रेम करता है। पहला ये, कोई प्रेम करने पर उसे प्रेम करता है या करती है, अब कोई इसे प्रेम नहीं करने पर भी मुझे प्रेम करता है या करती है, अब कोई प्रेम करो न करो वो किसी को प्रेम नहीं करता। पूछती है बड़ी भाव के साथ में, बड़ी नम्रता के साथ, प्रभो आप इसमें से कौन से हैं जरा बतलाइए। तो परीक्षा कृष्ण के मुख से, कृष्ण के ही तर्कों को युक्तियों को हटा करके कृष्ण मुझसे ये कहना चाहती हैं कि हमने अन्याय किया, प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं किया, ये कहना चाहती हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं या करती हैं वो बनिए हैं। कोई दुकान लगा करके कोई पैसा देता है उनको उतना चीज दे देते हैं माफ करके, उसको अच्छे जवैया हुए वो, नहीं तो तराजू घटिया रहती है तो उसमें कुछ मार दिया डंडी और अच्छे चीज का नमूना देखा करके घटिया माल भी उसमें चला देते हैं, ऐसे बनिए हैं। इसलिए इसमें प्रेम नहीं है, सौभाग्य भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ये तो केवल बनियादी है। इसलिए कृष्ण से कोई प्रेम करता हुआ कृष्ण से कोई चीज मांगे और उसकी सारी अभिलाषाएं कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त और कोई कामना वासना डिजायर हो तो ये बनियादी, इसमें धर्म नहीं है, इसमें कोई भी सौभाग्य नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, ये सीधा नहीं। और जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं इसमें धर्म भी है, इसमें सौभाग्य भी है, दयालुता भी है। ये कौन? माता पिता और गुरु। बेटा बेटी जल्दी माता पिता की सेवा भी नहीं करते हैं, सभी माता पिता अपने पुत्र की कोई भी विपत्ति इत्यादि को नहीं देख सकते, लाख उसको नहीं माने सभी बाप और मैया सके पुत्र का कल्याण कल्याण हो। कुछ हो गया सब कुछ उसने क्या बंदूक बिताना और थोड़ी देर के बाद जाना मैया जहां मैया कहां बस सब सात कुंडल इसलिए इसमें धर्म पक्षांतर के रूप में कृष्ण ने ये बताया कि गोपियां ये तुम हो, मैं प्रेम करूं और न करूं तुम बिना प्रेम के व्यवहार नहीं करती, कितने तुम लोगों का प्रेम हमारे प्रति है ये आदर, किंतु मुझसे नहीं बदलाए थे तुम। और तीसरा कौन? तीसरा वो जो प्रेम कोई करे और ना करे वो किसी से प्रेम नहीं करे। अब इसको चार भागों में विभक्त कर दो, ये विभिन्न प्रकार के इस पर प्रेम का बतला रहा हूं। इसलिए पहले वाला प्रेम प्रेम नहीं है, संसार में 99% नहीं करे प्रेम, ऐसा ही प्रेम करते हैं बढ़ियागिरी, इसलिए वो प्रेम नहीं है, घटिया किस्म का प्रेम, वो बिजनेस। और कुछ उसमें थोड़े से रह जाते हैं, कृष्ण अपना प्रेम प्रकाश करें ना करें किंतु वो प्रेम करना कृष्ण नहीं छोड़ता, या प्रेम बहुत उच्च कोटि का है, हम लोग ऐसे ही कृष्ण के प्रति करना चाहिए। अन्ना विदा पिता सुनम ज्ञान समा जन अप्रतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति पर कृष्ण को सुख देखेंगे, उसमें अपने सुख दुख को वो साधक नहीं देखता है, तीसरे को बताया। देखो जो प्रेम करे और ना करे वो किसी को प्रेम नहीं करता, वो कौन है? आत्माराम। आत्माराम माने आत्मनिर्भर करने वाला, उसको शरीर की सुख दुख दे। सनत कुमार सुखदेव गोस्वामी जी आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऋण के रहते हैं, इनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं जगत से, इसलिए उनको तुम कपड़ा धोती रुपया पैसा सोने का हाथ दे दो तभी उनको क्या मतलब, और यदि कुछ भी ना करो तभी क्या मतलब, ऐसे लोग नहीं करते। और दूसरे कौन? आत्माराम आत्मकाम, जिनकी सारी कामनाएं पूरी होती है, किसी चीज की कामना ही नहीं है उसको, किसी से क्या मतलब, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, निंदा कर रहा है, स्तुति कर रहा है, उसे क्या मतलब, कुछ भी मतलब। ये आप का काम कृष्ण कहते हैं, देखो इन दोनों में चला है कि तू ऐसा नहीं, क्यों नहीं हूं? यदि आत्मरमण में होता, आत्मरमण करने का बात, तो बल्कि बजा करके तुमको कैसे बुला, इसलिए मैं आत्माराम है, आत्माराम के गुरु के गुरु के गुरु हैं, किंतु कृष्ण दिखला रहे हैं भक्तों के प्रेम को पाने के लिए मचलते हैं। यशोदा जी का दूध गोपियों का मक्खन खाने के लिए मचल करके उनके घर में चोरी करते हैं, तो आपका काम काम। यशोदा जी उनको गोदी से उठा करके बैठा गई और दूध को बचाने के लिए गई, और कृष्ण ने क्रोधित होकर के भंड तोड़ दी, मैं कहा आत्माराम, मुझको तो क्रोध भी आया, इसने आत्माराम नहीं। और आत्मकाम मेरी कामना ही यदि पूर्ण हो गई तो राज क्यों करता तुम लोगों के साथ में, तुम्हारे पैर क्यों दबाता, तुम्हारे श्वेत बिंदुओं को किस लिए पूछता, इसलिए आत्मकाम भी नहीं हूं। जहां जसोदा जी का स्नेह देखा उनको बड़ी भूख लग जाती है, भक्तों का यदि देखा केले का छिलका बिजलानी के घर में देखा बड़ी जोर से भूख लग जाती है, दुर्योधन के घर में निवास त्याग दिया और इनके घर में बिगड़ाने के घर में जब गए तो उनको बड़ी जोर से भूख लगी, इसको आत्माराम के लिए आत्मकाम के लिए आत्मकाम, उनको बड़ी जोर से भूख लगी और बिगड़ाने में प्रेम में पककर भीतर का साथ फेंकने लगी, होश नहीं और छिलके और उसको ऐसे खा रहे हैं प्रेम के साथ में, आज द्वारका से अभी तक भूखे ही चल रहे हैं, बड़ी जोर से भूख लगी, प्रेम का स्वादन करते हैं, प्रेम के लिए उनको भूख हो जाती है, भक्तों का भाव देते ही उनको भाव का साधन करने की लालसा जब उठती है वो अपने को भी रोए रोक सकते, इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं आत्माराम और आत्मकाम होगा, फिर रात करके तुमको क्यों बुलाता, फिर तुम्हारे पैर को मैंने दबाया और तुम्हारे श्रृंगार को मैंने ठीक किया, जो गोपी आई थी एक केवल एक आंख में पूछा कृष्ण ने, एक ही आंख में तुम अंजन लगाई, दूसरे आंख में नहीं लगाई, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और उसको बैठा करके धीरे से काजल निकाल करके उसके दूसरों आंखों में भी वो काजल लगाए, यह आत्मकाम का ये लक्षण है ना, आत्माराम का लक्षण है, मैं दोनों में देख रहा हूं। फिर तीसरा जो गुरु द्रोही होते हैं वो कोई प्रेम करे और ना करे वो गुरु द्रोही हो गया, गुरु द्रोही भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसा गुरु द्रोही होता है किसी कारण से अपने माता पिता से विरोध करता है, और कोई अकारण ही माता पिता से विरोध कर देते हैं, इसमें दूसरे वाले जो है अकारण ही जो द्रोह करते हैं वो तो भयंकर महाअपराधी है, वो गुरु द्रोही है, माता पिता के साथ ही द्रोही है, माता पिता पिता का और गुरु का ऋण चुकाना बड़ा भारी कठिन है। जो माता पिता की और गुरु की सेवा छोड़ देते हैं, मरने के बाद में उनके अपने शरीर का मांस खाना पड़ता है। उसको स्वर्ग जाने के बाद भी किसी किसी कारण से स्वर्ग हुआ, वहां पर भोजन नहीं मिलेगा, यहाँ आकर के अपना शरीर पड़ा रहेगा, उसी का मांस खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा दिया गया है। प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने संक्षेप किया। इनका ऋण कभी दूर नहीं, इनका ऋण एक तरह से ही दूर होगा। यदि कृष्ण का किसी ने भजन किया तो कृष्ण का सभी ऋणी है महाऋण से, लेकिन माता का ऋण, पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, सभी ऋण भगवान का भजन करने से हो जाता है। इसीलिए कहा सर्वधर्म प्रत्येक महान एक अंश महाराज सूचक शोक मत करो, मैं सबका ऋण मिला दूंगा, तुमको कोई भी क्लेश नहीं होगा, कोई भी पाप नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि वो गुरु द्रोही जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, अर्थात माता पिता स्नेह करते हैं, गुरु जन स्नेह करते हैं, किंतु ये गुरु द्रोही ये नहीं करते। और उसमें भी एक अकारण पिताजी वृद्ध हो गए, मैया वृद्ध हो गए, कहते हैं मर नहीं जाता, खांसते खांसते एकदम तबाह कर दिया, ये अकारण। और सकारण क्या है, उन्होंने बड़े बेटे को उसने सब कुछ लिख दिया, छोटे बच्चे ऐसे रह गए, ताकि तुमने सब कुछ उसको दे दिया, अच्छा बच्चा, ये सकारण। किंतु दोनों में कोई नहीं होना चाहिए। सकारण क्या है, पत्नी ने कहा जब इच्छा हमारी नहीं बनेगी अब हम लोग अलग हो जाए, बहुत समझाया नहीं माने, अच्छा भाई चल सब हम वहां से आकर के पिताजी की कोई सेवा करें, ये सकारण। किंतु है गुरु द्रोहिता, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुरु द्रोही और अकृतज्ञ, अकृतज्ञ माने क्या, किए हुए भलाई को नहीं मानने वाला अकृतज्ञ है। हम लोग को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए किसी का। माता पिता ने गुरुजनों ने कितनी हमारी सेवा की, एक गाय के लिए हम कृतज्ञ हैं क्योंकि दूध देती है, वो मैया है और उसी का मांस हम खाएंगे, वो माता है। इसलिए अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अकृतज्ञ प्रेम करने पर भी नहीं करते हैं, वो महास्वार्थी जघन्य स्वार्थी होते हैं। इसलिए इसमें प्रेम का स्तर दिखलाया गया, जितना स्वार्थ अधिक है, कोई संसारिक लाभ इत्यादि की पूजा और संसारी कोई स्वार्थ का कारण है, प्रेम दब जाता है। कृष्ण कहते हैं कि देखो देवियों, इनमें से मैं एक भी नहीं हूं, आप क्या है, वो क्या ये चाहती थी, यही अकृतज्ञ के रूप में कुछ हूं। उसे भी कृष्ण साफ साफ बचा करके निकले, तो आप कौन है, मया परोक्षम तिरोहिता इत्यादि कहते हैं। देखो मैं इनमें से कोई नहीं, मैं तो अंतर्हित होगा, इसलिए जिस प्रकार से एक दरिद्र व्यक्ति है और हम एक गरीब व्यक्ति और उसको कोई विशेष धन मिला, चिंता नहीं मिल गई, पांच पत्थर मिल गया, उसके लिए वो सुरक्षित रख रहा है, थोड़ी देर के बाद किसी ने उसको ले लिया चोरी कर, अब चोरी कर लिया कहा है कर, हाँ है तो एक पत्थर दूर हो गया, किसी ने कहा कि पत्थर नहीं होता, चिंता नहीं, और भी चिंतित हो गया। इसलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारा यह प्रेम बढ़ाने के लिए मैं अंदर में कहीं गया था, दूर दूर नहीं गया था, मैं तो झाड़ियों के अंतराल में रह करके तुम्हारी प्रेम में बातों को मैं सुन रहा था, और जगत को ये जानना चाहता था कि तुम्हारा हमारे प्रति कितना प्यार और प्रेम है, जगत बाकी लोग किस तरह के लोग सब ठीक है और सब है और तुम्हें जब बिगड़ में तुम लोगों की क्या अवस्था होती है, इस चीज को दिखलाने के लिए और मैं तुझे स्वयं प्रसारण करने के लिए मैं सीखता गया था। इसलिए देवियों तुम लोग हमारे प्रति प्रेम मत करना, तुम्हारे लिए भी किया था, जब तुम्हारा यह जो प्रेम है पुत्रों तक बढ़ता चले, इसीलिए सीख गया था। सुना कहते हैं न पारे हम निर्भर देवियों, तुम्हारा ऐसा ऋण है कि मैं तुम्हारा चीर ऋणी हूं, देवताओं जैसी लंबी कोटि कोटि वर्षों की आयु पा करके भी मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी कदापि पूरी नहीं हो सकता। क्यों, कृष्ण कहते हैं जिसके बदले तुम लोग कुछ मांग लो, कृष्ण कहते हैं यदि मैं कहूंगी तुम मांगो इसमें, जैसे कि सूर्य को राज्य दे दिया, छपरी का जान सकता, जो कोई जो कुछ मांगता है उसको दे देते हैं, कोई मुक्ति मांगता है उसको विशा भी दे देता हूँ, यदि कोई बैकुंठ चाहता है तो बैकुंठ की गति दे देता हूँ, सबको माता पिता तक उनके प्रेम का बदला वो दे देते हैं, जो कुछ मंगता से दे देते हैं। देवियों मैं तुम्हारे यहाँ मैं हार गया, तुमको अपने बदले में कुछ ऋण क्रोध से भूल नहीं सका। क्यों? तुम मांगोगी, यदि कहूँ के मांगो तो तुम यही मांगोगेगी कि आप अपनी सेवा दीजिए। यदि सेवा कृष्ण देंगे फिर वो ऋण बन जाए। इसलिए देवियों तुम अपने गुण से और स्वभाव से ही आप ऐसी कृपा करो कि मैं तुम्हारा ऋण लूं, मैं तुम्हारा ऋण नहीं लूंगा। वो क्यों ने कहा ये आप हार करके दीजिए। क्यों? आप प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। इसी शब्दों से आपने हमें खरीद लिया, हम आपकी बची हुई हैं। सचमुच में हमारा ऋण नहीं, ये आपका ऋण है। ये परब्रह्म होते हुए भी मन से तो नहीं कागज पढ़ते किंतु भाव यही, इतने बड़े होकर के भी और कहते हैं कि मैं आपके प्रेम का ऋणी हूँ, मैं हम लोग आपकी यथार्थ ऋणी हूँ। ऐसा ये प्रेम दोनों का या प्रेम कुछ संसारी या और कोई बात ना मैं नहीं होता, विश्व भर के प्रेम होता है। इसी प्रेम को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु हुआ है। अब हम चलें रात के अंदर ध्यान होने के बाद में कृष्ण आ गए मथुरा में अपूर्ण उनको ले आए। फिर कृष्ण नहीं गए वृंदावन में, ब्रज में नहीं हुआ। दोनों में गुरु सुन है दो अंगुल, दो अंगुल भी नहीं। ये दो अंगुल माने यहाँ पर दो अंगुल लिखती है तो वहाँ का बॉर्डर, यहाँ का बॉर्डर तो मथुरा और बड़का तो मिलता जरूर होगा। वहाँ पर कितनी दूरी होगी? एक हिमालय के वक्त कोई दूरी नहीं, बहुत दूरी है भाव वाला। एक ऐस पर जरूर है और दोनों के विपरीत भाव है। हमारे पुत्र है, हमारे सुगम है,
उनको मर्जा नहीं चाहते, मर्जा करने में लग जाते हैं। बेटा खा लो नहीं भूख नहीं और हम भी याद रखें अपने हाथ में इसलिए कोशिश संता ने मैया ने कहा था तुम्हारी बोली हुई है और वो हाथों में सोने के हाथ में और रत्न की आगे लेकर एक व्यक्ति की खड़ी है कि हमारे पास में तो पहले हमने जी जाएगा और फिर तुम सब देख नहीं आया कि मुझे कहाँ देख रहे हैं भैया तो क्या और कहे भैया ये लोग सुधारना चाह रहे हैं कि अब सत्य बन जाए सत्य का प्रेम होता है इसे आज आपने को जाना होंगे ये कहते हैं बस देव और देव की तरह उत्तर और ऊपर से धन करने हैं क्योंकि ये भी तो भक्त है करते हैं अभी को छोड़ने में आसान नहीं हो सकता इसे आश्रय रहने चाहिए इसे आप लोग उतारते हैं आपके लोग मिलता है इसीलिए हो सकते हैं इसलिए राजीव को आना है द्वारा भी जाना है पांडवों से समय पांडवों की रक्षा करना है और पांडवों का व्यवहार भी करना है बहुत से चीजें कर रखे हैं उन्होंने राजा बना दिया अपने राजा के लिए उनको जब से मैं आया बच्चे खुलते नहीं जान में जाते नहीं मजबूत मानते नहीं तो है वो नहीं हुआ मेरे साथ पूर्ण समय पर जो कहे वो भी तो जाते हैं लेकर के भाव
Thank you.
इसमें उन्होंने कहा गोपियां मनमना भाव है। कैसे मनमना भाव है उदाहरण से आप लोग समझ सकते हैं। कृष्ण गोचार करने के लिए जा रहे हैं, वहां को बछड़े और बछड़ियां सुधर रहे। चलते चलते कृष्ण ने देखा एक घर के दरवाजे में एक कोई नव विवाहिता इंद्रप्रस्थ से अभी आई है, नंदबावली नई दुल्हनी। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बच्चों को लेकर के सखाओं के साथ में जब वन में चल रहे हैं प्रस्थान करने की दिशा में, वो दौड़ी हुई जाने लगी कृष्ण का दर्शन करने। चारों तरफ में वो हल्ला हो गया, कृष्ण पढ़ने जा रहे हैं, सभी लोग दूर जाते हैं।